भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आठ कर्मों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने तत्वार्थ परंपरा में यह बतलाया कि ज्ञान और दर्शन ये दो आवरण रूप हैं। वेदनीय जो है वो वेदन कराने रूप है, सुख दुख का जो अनुभव होता है वो वेदनीय से अनुभव करने वाला ज्ञान होता है, लेकिन उसमें साधन वेदनीय कर्म होता है। फिर मोहनीय कर्म जो है वो भ्रम करता है, श्रद्धा में भी और क्रिया में भी। फिर आयु कर्म एक भाव में अपने को रोक कर रखता है, बांध के रखता है। फिर नाम कर्म जो है वो नमयति आत्मानम इति नाम, आत्मा को नमा देता है, अलग अलग प्रकार के आकार वाले शरीरों में आत्मा को झुका देता है। वो जैसा उदय में होगा उसी तरह से आत्मा उस नाम कर्म को, उस उदय को प्राप्त होकर के चलेगी। फिर गोत्र कर्म होता है, तो गोत्र कर्म के बारे में अब चर्चा करनी है अभी। ततो गोत्र वचनम प्राप्त शरीरादिका लाभस्य संशब्दनाभिव्यक्ते है। गोत्र कर्म ऐसा होता है जो परिप्राप्त शरीर आदि लाभस्य, प्राप्त हुए शरीर का जिसको लाभ हुआ है, ऐसे पुंस आत्मा को गोत्रोदय निमित्तम शुभाशुभम संशब्दनम। गोत्र शब्द जो है वो ध्वनि उत्पन्न करने के रूप में है, तो ये ऊंचा है ये नीचा है, इस प्रकार की ध्वनियां जो उत्पन्न होती है वो इस गोत्र के उदय से होती है। अभिव्यज्यते ततो नामनोनंतरम गोत्राभिधानं क्रियते। नाम से शरीर बनता है, फिर उस शरीर को प्राप्त आत्मा के लिए ये नीच और उच्च है, इस तरह का जो विभाग होता है वो गोत्र के उदय से होता है। अब इसमें बारहवा सूत्र है आठवें अध्याय का, जहां गोत्र के भेद बतलाए जा रहे हैं। अथ सप्तमी कियत प्रकार इत्यत्र उच्यते। अब सातवीं प्रकृति जो है कितने प्रकार की है, इसलिए इस प्रश्न के आने पर यहां पर कहते हैं उच्चैर नीचैश्च, उच्च और नीच ऐसे दो प्रकार की गोत्र होते हैं, गोत्र प्रकृति। गोत्रम द्विविधम उच्चैर नीचैर इति विशेषणात्। उच्च और नीच विशेषण होने के कारण गोत्र के दो भेद हैं, गोत्रम द्विविधम। तत्र कीदृशम उच्चैर गोत्रम केदृग्वा नीचैर गोत्रम। अब उच्च गोत्र कैसा होता है, नीच गोत्र कैसा होता है, ये प्रश्न है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, यस्योदयात् लोक पूजितेषु कुलेषु जन्म तद उच्चैर गोत्रम। जिसके उदय के कारण लोक में जो पूजित कुल हैं, जिन कुलों की लोक में पूजा की जाती है, उन कुलों में जन्म होता है, वह उच्च गोत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि गोत्र के उदय से कुल की प्राप्ति होती है, और कुल वंश जाति ये तीनों एकार्थक है। भेद इसी बात का है कि कुल पिता के वंश को कहते हैं और जाति माता के वंश को कहते हैं, तो है दोनों ही वंश। तो उन कुलों में उत्पन्न करना गोत्र का काम है। लोक पूजेशु कुलेशु, लोक पूजितेशु कुलेशु, लोक में जो पूजित कुल है कैसे हैं, प्रथित महात्मेशु, जिनकी महिमा बहुत विस्तृत है, लोग सब जानते हैं कि बड़े महिमावान हैं। इक्ष्वाकु, यदु, कुरु, हरि, जाति, प्रभृतिषु। इक्ष्वाकु कुल, यदु कुल, कुरु वंश, हरि वंश, जाति वंश आदि में जन्म जिससे होता है, जिस यस्य उदयात भवति जन्म तद उच्चैर गोत्रम अवसीयम, वो निश्चित कर लेना कि ये उच्च गोत्र है जो ऐसे कुलों में जन्म देता है। फिर गर्हितेषु यत् कृतं तन् नीचैर गोत्रम, फिर जिसके द्वारा गर्हित कुलों में जन्म होता है वह नीच गोत्र है। अब गर्हित कुल कौन से हैं? गर्हितेषु, गर्हित मतलब दरिद्र, दरिद्रा प्रतिज्ञात दुखा कुलेषु यत् कुलम यत् कृतं प्राणिनां जन्म। देखो, एक तो बताया दरिद्र कुल, उस कुल में हमेशा दरिद्रता ही चली आ रही हो। फिर अप्रतिज्ञात, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा खानदान है, ऐसे गुमनाम खानदान वाले भी नीच गोत्री होते हैं। और दुखा कुलेशु, हमेशा दुखों से आकुलित रहने वाले जो कुल हैं, उनके यहाँ पीढ़ियों से वही परेशानियां चालू है, तो वो भी नीच गोत्र है। तो प्राणियों का जन्म जिस कारण से ऐसे स्थानों पर होता है, वह उस कर्म का नाम नीच गोत्र कर्म है। अब इस पर अपन थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। गोत्र की बात निकली है तो तो पहली बात तो ये होगी कि कर्म दो प्रकार के हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। ये आठवां अध्याय जो है वो कर्म बंध का ही वर्णन करता है। तो घाती कर्म और अघाती कर्म, ऐसे दो भेद हैं कर्म के। उनमें घाती कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म है। अघाती कर्मों में वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु कर्म है। अब इसमें एक बात विशेष यह है कि अंतराय कर्म घाती होकर के भी अघाती जैसे ही है, और वेदनीय कर्म अघाती होते हुए भी घाती जैसा है। क्योंकि मोहस्य बलेण घादते जीवम, ऐसा आचार्य निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि मोह के साथ उसकी जब शक्ति बढ़ जाती है वेदनीय की, तो वो जीव का घात करती है। तो मोहस्य बलेण, मोह की शक्ति से वेदनीय साता असाता जीव को परेशान करता है, इसलिए वो अघाती होकर भी घाती है, और ये अंतराय घाती होकर भी अघाती है। अब अघाती कर्म के अंतर्गत एक नाम कर्म है, जिसको अभी अभी अपन पढ़ करके आए हैं। उसके उत्तर भेद अनेक हैं, उनमें से गति नाम कर्म एक भेद है। सबसे पहला भेद कौन सा है नाम कर्म का? गति नाम कर्म। तो गति नाम कर्म के उदय से चार गतियां होती हैं। कौन सी चार गतियां? नरक, तिरेंच, मनुष्य, देव। फिर जाति नाम कर्म के भेदों में पंचेंद्रिय जाति के चार गति संबंधी चार भेद होते हैं। वैसे तो पांच भेद है जाति नाम कर्म के, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय और पंचेंद्रीय। लेकिन इनमें से जो पंचेंद्रिय जाति है, ये चूंकि चारों गतियों में पाई जाती है, इसलिए पंचेंद्रीय जाति के चार भेद हो जाएंगे। मनुष्य संबंधी जाति, देव संबंधी, तिर्यंश संबंधी और नारक संबंधी। अब उनमें से जो एक भेद है मनुष्य जाति, वह जीव विपाकी कर्म प्रकृति है, यानी इसका फल सीधे सीधे जीव को प्राप्त होता है, शरीर को नहीं मिलता। अब इससे क्या होता है, आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के 38वें पर्व में लिखा है, मनुष्य जाति रे कैव जाति नामोदय उद्भवा वृत्ति भेदा हितात भेदा चातुर्विध्यमिहाश्नुते, ब्राह्मणा व्रत संस्कारात क्षत्रिया शस्त्र धारणात वणिजोर्थार जनान्यायात छूद्रा न्यग्वृत्ति संश्रयात। इस कर्म भूमि में जाति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न एक ही मनुष्य जाति वृत्ति भेद कृत भेदवश, यानी आजीविका में अंतर होने के कारण चार भेदों को प्राप्त हो जाती है। वैसे तो मनुष्य जाति एक है, लेकिन उसके चार भेद इन आजीविकाओं के कारण होते हैं। यहां के मनुष्य व्रतों के संस्कार से ब्राह्मण, शस्त्र धारण से क्षत्रिय, न्यायोपात्त धनार्जन से वैश्य, और निम्न आजीविका के आश्रय से शूद्र होते हैं। यह आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है। और जाति नाम कर्म को परिभाषित करते हुए सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अध्याय 8 सूत्र 11 की टीका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, तासु नरकादि गतिष्वव्यभिचारिणा सादृश्येन एकीकृतोर्थात्मा जाति। नाम कर्म के ही अंतर्गत जाति नाम कर्म को परिभाषित करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा है कि उन सर्वविदित नरक आदि गतियों में, पहले तो गति नाम कर्म था, फिर उसके बाद जाति नाम कर्म था, तो गतियों के चार भेद बता दिए। अब जाति नाम कर्म का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं कि उन सर्वविदित यानी प्रसिद्ध नरक आदि चार गतियों में निर्दोष समानता की अपेक्षा अर्थों की एक की गई आत्मा अर्थात स्वरूप जाती है। तात्पर्य, गति नाम कर्म से विभाजित जीवों को जाति नाम कर्म किसी निर्दोष समानता की अपेक्षा एक करके ग्रहण करता है। उदाहरणार्थ, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से इंद्रिय संख्या की अपेक्षा चारों गतियों के जीवों में निर्दोष सदृशता अर्थात एक जाति पाई जाती है। चारों गतियों के जीव पांच इंद्रियों की अपेक्षा एक ही जाति वाले हैं जो पंचेंद्रिय हैं। इसके बाद ये थोड़ा जाति आदि का जो वर्णन है ये अगर सावधानी से सुन ले तो बहुत सारी बात स्पष्ट हो सकती है कि इनका क्या महत्व है। हुंडावसर्पणी काल में वर्णों के वर्गीकरण की भूमिका, भगवत जिनसेन आचार्य ने महापुराण के 16वें पर्व में लिखा है कि भगवान आदि पुरुष ने प्रजा का कष्ट सुनकर निम्नलिखित आकलन किया। धर्मस्थल में भी किया था उनने, एक नाट्य मंच पर। क्या था, श्रुत्वेति तद्वचोदीनम करुणा प्रेरिताशय मन प्रणिदधावेवं भगवान आदि पुरुषः पूर्वापर विदेहेषु या स्थिति समवस्थिता साध्य प्रवर्तनीयात्र ततो जीवन्त्यमुः प्रजाः षट्कर्माणि यथा तत्र यथा वर्णाश्रम स्थितिः यथा ग्राम गृहादीनां संस्थायाश्च पृथक् विधाः तथाप्यात्रुचिता तथात्राप्युचिता वृत्ति रूपायैरेभि रंगिनाम नूपायांतरमस्तेषां प्राणिनां जीविकां प्रति कर्मभूरद्यजातेयं व्यतीतौ कल्पभूरुहां ततोत्र कर्मभिः षड्भिः प्रजानां जीविकोचिता। तो उनको बताने के पहले आदिनाथ भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र की सारी बात समझ ली कि कर्म भूमि में क्या व्यवस्था होती है। यहां भोग भूमि समाप्त होने की स्थिति में थी। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर वो लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि हम क्या करें, ये पेड़ हमें फल नहीं दे रहे हैं। पहले तो हमें जो भी हम मांगते थे मिल जाता था कल्प वृक्षों से, अब कुछ नहीं देते, क्या करें, हमें भूख भी लग रही है, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब प्रश्न करते हैं। और ये जो जानवर थे ये पहले कितने अच्छे थे, अब तो आंखें दिखाते हैं, गुर्राते हैं, डरावनी आवाजें निकालते हैं, हमें डर लगता है, हम क्या करें। तो भूख भूमि में वो जो शेर वगैरह थे वो बड़े सौम्य थे, लेकिन अब कर्म भूमि आ गई तो फिर ये बदल गए, उनकी प्रकृति बदल गई। उनके दीन वचन सुनकर जिनका आशय करुणा से प्रेरित था, ऐसे भगवान आदि पुरुष ने मन को इस प्रकार एकाग्र किया। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। जो स्थिति पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्रों में सुव्यवस्थित है, ये आदिनाथ भगवान अपने मन में विचार कर रहे हैं, वह स्थिति आज यहां प्रवर्तनीय है। यह प्रजा उससे जीवित रहेगी। जैसे षटकर्म वहां है, जैसी वर्ण और आश्रमों की स्थिति वहां है, और जैसी ग्राम गृह आदि की अलग प्रकार की रचनाएं वहां है, यहां भी प्राणियों के लिए इन उपायों से उसी प्रकार वृत्ति उचित है। इन प्राणियों के लिए आजीविका के प्रति अन्य उपाय नहीं है, यानी इनको विदेह क्षेत्र जैसे ही चलना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। कल्प वृक्षों के व्यतीत हो जाने पर यह भोग भूमि आज कर्म भूमि बन गई है। अतः यहां प्रजा के लिए षटकर्मों से आजीविका करना उचित है। उत्पादितास त्रयोवर्णास तदा तेनादि वेधसा क्षत्रिया वणिज शूद्रा क्षतत्राणादिभिर्गुणैः क्षत्रिया शस्त्र जीवित्वा क्षत्रियशस्त्रजीवित्व मनुभूय तदा भवन वैश्याश्च कृषि वाणिज्य पाशुपाल्योपजीविनः तेषां शुश्रूषणात् शूद्रास् ते द्विधा कार्वकार्वः कारवो व्रजकाद्याः स्युस्ततोऽन्ये स्युरकारवः कारवोऽपि मताद्वेधा स्पृश्यास्पृश्य विकल्पतः तत्रास्पृश्याः प्रजाबाह्याः स्पृश्याः स्युः कर्तकादयः। उस समय आदि ब्रह्मा ने क्षतत्राण संकटों से रक्षा करना आदि गुणों की अपेक्षा तीन वर्ण बनाए। तब शस्त्रों से आजीविका का अनुभव करके क्षत्रिय बने। कृषि वाणिज्य और पशुपालन द्वारा उपजीविका करने वाले वैश्य बने। देखो वैश्यों की तीन उपजीविका है आदिनाथ भगवान की बताई हुई, कौन से कृषि वाणिज्य और पशुपालन। और उन क्षत्रिय एवं वैश्यों की शुश्रूषा सेवा करने के कारण शूद्र बने। वे शूद्र कारु और अकारु ऐसे दो प्रकार के होते हैं, रजक आदि धोबी वगैरह कारु होते हैं और उनसे भिन्न अकारु होते हैं। कारु भी स्पृश्य और अस्पृश्य के भेद से दो प्रकार के माने गए हैं। दो भेद बताए, मतलब शूद्रों के दो भेद बताए, कारु और अकारु। कारीगरी वगैरह करने वाले कारु होते हैं, तो रजक आदि कारु होते हैं धोबी वगैरह, और उनसे भिन्न अकारु होते हैं। और कारु में भी स्पृश्य और अस्पृश्य ऐसे दो भेद होते हैं। उनमें अस्पृश्य पजा से अहर अलग होते हैं और स्पृश्य नाई वगैरह प्रजा के अंदर माने जाते हैं। अब वर्ण संकर और जाति संकर इन दोनों की चर्चा करते हैं। यथास्वम सोचितं कर्म प्रजा दधुर संकरम विवाह जाति संबंध व्यवहारश्च तन्मतम यावती जगतो वृत्ति रपापोपहता इच्छया सा सर्वास्य मतेनासीत सहिधाता सनातनः। प्रजा ने व्यवस्थित रूप से अपने उचित कर्म अर्थात योग्य आजीविका को संकर रहित धारण किया और उन आदि पुरुष के मतानुसार वैवाहिक जातियों के परिणय संबंधों का व्यवहार भी संकर रहित धारण किया। किसने? प्रजा ने। जगत की जो भी जितनी पाप से अनुपहत वृत्ति थी वह सब इनके मत से होती थी, वृषभदेव के मत से होती थी, क्योंकि वे प्रसिद्ध भगवान सनातन ब्रह्मा थे। तात्पर्य, तीर्थंकर के समय दो व्यवस्थाएं उनके मतानुसार चलती थी, वर्ण संबंधी वृत्तियां और विवाह संबंधी जातियां। इनका अयोग्य मिश्रण न होने से उस समय भगवान के मत का उल्लंघन करने वाले वर्ण संकर और जाति संकर दोनों नहीं थे। वास्तव में भगवान ने अवधि ज्ञान से विदेह की अनादि व्यवस्था जानकर यहां कर्म भूमि का प्रवर्तन किया था। भगवान द्वारा प्रतिपादित वृत्ति पाप से अनुपहत इसलिए थी क्योंकि वह वृत्ति प्राणी वधादि पापों से रहित थी। उसमें मांस उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुक्कुट उद्योग आदि हिंसक आजीविकाएं नहीं थी आदिनाथ भगवान के समय। इसी ग्रंथ के 16वें पर्व में एक श्लोक है जिसका काव्य क्रमांक 247 है। शूद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्या तान स्वांच नैगमः वहेत स्वां तेच राजन्यः स्वाम द्विजन्मा क्वचिच्चताः। इस श्लोक का अर्थ करते समय विवाह का समावेश न करते हुए वर्ण वृत्ति को ही यदि स्वीकार किया जाता है तो प्रासंगिक अर्थ निकलता है। शूद्रेण शूद्रा वोढव्या, शूद्र के द्वारा शूद्र आजीविका विवाहने योग्य है, ये उपमा अलंकार है, क्योंकि विवाह तो कन्या से होता है ना, पर यहां पर आचार्य आजीविका से विवाह करने का कह रहे हैं, तो आजीविका से विवाह अलंकार में ही हो सकता है। यानी आजीवन संबंध आपको जिससे जोड़ना है उसको विवाह कहते हैं, तो आप अपनी आजीविका से आजीवन संबंध जोड़ लेंगे, ऐसा आचार्य कह रहे हैं कि शूद्र के द्वारा शूद्र वृत्ति विवाहने योग्य है, उपमा अलंकार, अन्य नहीं। नैगम अर्थात वैश्य, अपनी वृत्ति का वहन करे। वैश्य वृत्ति क्या है अभी अपन ने सुना था, तीन बातें थी। वैश्य वृत्ति में क्या था, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, ये तीन वृत्तियां थी। तो वैश्य अपनी वृत्ति का वहन करे और किसी देश काल में शूद्र वृत्ति का वहन करे, कभी ऐसी परिस्थिति बने तो फिर शूद्र वृत्ति का भी वहन करे। राजन्य अर्थात क्षत्रिय, अपनी वृत्ति का वहन करे। यानी क्षत्रिय वृत्ति क्या है, रक्षा करना, उसका वहन करे। तथा किसी देश काल में वैश्य एवं शूद्र वृत्तियों का भी वहन करे क्षत्रियों के लिए। पांचों पांडव अज्ञातवास में तो कुछ भी बन गए थे ना। फिर द्विजन्मा अर्थात ब्राह्मण, अपनी वृत्ति का वहन करे और किसी देश काल में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वृत्तियों का वहन करे। शूद्र अपनी शूद्र वृत्ति अर्थात सेवा शुश्रूषा रूप आजीविका से विवाह करे, उसे मरण पर्यंत अपनाए, अन्य वृत्ति को नहीं। वैश्य अपनी कृषि, पशुपालन एवं जलस्थल आदि में यात्रा पूर्वक वाणिज्य, व्यापार आदि करके वैश्य वृत्ति का वहन करे, तथा किसी देश काल में शूद्र वृत्ति का भी वहन करे। राजन्य अर्थात क्षत्रिय अपनी रक्षक शस्त्र धारण रूप क्षत्रिय वृत्ति का वहन करे तथा किसी परिस्थितिवश वह वैश्य एवं शूद्र वृत्ति का भी वहन करे। द्विजन्मा ब्राह्मण अपनी पठन पाठन दानक ग्रहण एवं पूजा आदि अनुष्ठान रूप ब्राह्मण वृत्ति का वहन करे तथा किसी क्षेत्र काल में वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वृत्ति का भी वहन करे। स्वामिमां वृत्तिमुत्क्रम्य यस्त्वन्यां वृत्तिमाचरेत् स पार्थिवैर्नियन्तव्यो वर्ण संकीर्णिरन्यथा। किंतु जो इस निजी वृत्ति अर्थात आजीविका का उल्लंघन करके अन्य वृत्ति का आचरण करता है वह राजाओं के द्वारा बलपूर्वक नियंत्रित करने योग्य है, अन्यथा वर्ण संकरता आती है। तात्पर्य, स्वभाव से ही मनुष्य निम्न वर्ण की वृत्ति में तत्पर नहीं होता। स्वभाव से तो मनुष्य निम्न वृत्ति वर्ण की वृत्ति में तत्पर नहीं होता, उसे विशेष परिस्थिति में वह वृत्ति अपनानी पड़ती है जिसकी मर्यादा भगवान ने दी है। जो मनुष्य ऊपर के वर्णों की वृत्ति को अपनाता है वह राजाओं के द्वारा दंडनीय होता है, अन्यथा वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। इससे स्पष्ट होता है कि जिनसेन आचार्य के कथनानुसार वर्ण संकरता उपरितन वर्णों की आजीविका से उत्पन्न होती है, विवाह से नहीं। लोक में जो विवाहाश्रित वर्ण संकरता मानी जाती है वह आगम की अपेक्षा जाति संकरता है, क्योंकि वर्णगत वंश को ही वैवाहिक जाति कहा जाता है। शूद्र वृत्ति और क्षुद्र प्रवृत्ति में बड़ा अंतर है। शूद्र वर्ण का आधार आदि ब्रह्मा द्वारा निर्देशित सेवा आदि वृत्ति है, शूद्र वृत्ति आजीविका है, जबकि क्षुद्र प्रवृत्ति दुराचार है। भगवान द्वारा उपदेशित न होने से क्षुद्र प्रवृत्ति सभी वर्णों के लिए दंडनीय अपराध है। जस कम्मस्य उदयेन उच्चा गोदम होदी तम उच्चा गोदम। जिस कर्म के उदय से उच्च गोत्र होता है उसका नाम उच्च गोत्र कर्म है। गोत्रम कुलम वंशः संतानम इत्येकोर्थः। गोत्र कह लो, कुल कह लो, वंश कह लो, संतान कह लो, ये सब एकार्थक है। जस कम्मस्य उदयेन जीवाणम नीच गोदम होदी तम नीच गोदम नाम। जिस कर्म के उदय से जीवों को नीच गोत्र होता है वह नीच गोत्र नामक कर्म है। ये अपने पूर्व भव के कर्मों से जो वर्तमान में प्राप्त होता है उसकी चर्चा है। और जाति एक जीवन में बदलती नहीं है। जातिर देहाश्रिता दृष्टा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि जाति देहाश्रित है, तो जब अपन देह नहीं बदल सकते तो जाति कैसे बदल सकते हैं। तो इस तरह उच्च और नीच गोत्र की चर्चा हुई। विशेषार्थ में विद्वान लिखते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसके उच्च गोत्र का उदय होता है वह ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेता है जहाँ सदाचार की प्रवृत्ति हो और उस ओर झुकाव हो, या ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क हो। और जिसके नीच गोत्र कर्म का उदय होता है वह विरुद्ध प्रवृत्ति वाले माता पिता के यहाँ जन्म लेता है। कुल, गोत्र, संतान और परंपरा, इनका अर्थ एक है। परंपरा दो प्रकार से चलती है, एक पुत्र पौत्र प्रपौत्र मूलक परंपरा और दूसरी आचार विचार मूलक परंपरा। यहां दूसरी प्रकार की परंपरा ली गई है। गोत्र का संबंध शरीर या रक्त से, ये पंडित जी के विचार है, न होकर जीव के आचरण आचार विचार से है। गोत्र कर्म का को जीव विपाकी कहने का कारण भी यही है। इस प्रकार गोत्र कर्म उसके भेद और उसके स्वरूप के का संक्षेप में विचार किया, ये पंडित जी के विचार थे। अभी तो अपन परिभाषा ये पढ़ी, मूल में परिभाषा ये थी कि जिसके उदय से उधर जन्म लेता है। आचार विचार की बात वहां मूल में नहीं लिखी थी, ये पंडित जी अपने दिमाग से बता रहे हैं, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी ये अपने चिंतन से कह रहे हैं कि गोत्र का संबंध आचार विचार से। कहां से आचार विचार से, जब नाम लेकर के कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु यदु आदि वंशों में जो लोक में विख्यात वंश है उनमें जन्म लेना उच्च गोत्र है, तो फिर कहां आचार विचार रहा? तो वो तो जन्म से संबंधित है। इसलिए ठीक है, अब ये क्या है कि कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो चिंतन को प्रधानता देते थे और आगम कहीं कहीं गौण हो जाता है इनके वचनों द्वारा। कई स्थानों पर ऐसा अपने को देखने मिलता है। अभी इसी ग्रंथ में हम और भी देखें जरा कहां पर उन्होंने क्या किया है। जब एक जगह ऐसा मिलता है तो लगता है कि दूसरी जगह और देख लें। दो सूत्र और याद आ रहे हैं। जहाँ भी कोई बात है ठीक है, जहाँ जहाँ हमें शंका है वहाँ हम एक बार पेज पलट के देख रहे हैं। यहाँ पर भी वैसे ही, तो बहुत जगह वैसा है। चलो कोई बात नहीं। अष्टम यहां कर्म प्रकृति रुत्तर प्रकृति निर्देशार्थम आह। अब आठवीं जो कर्म प्रकृति है उसकी उत्तर प्रकृतियों का निर्देश करने के लिए आचार्य आगामी सूत्र कहते हैं, तेरवा सूत्र है, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। अंतराय कर्म के पांच भेद है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। अब ये प्रकृति बंद का वर्णन पूर्ण हुआ। व्याख्या था प्रकृति बंद विकल्पा, यानी कितनी प्रकृतियां होती है, 148 प्रकृतियां पूरी गिना दी। अब इदानीम स्थिति बंध विकल्पो वक्तव्य है, अब स्थिति बंध के भेद बताने योग्य है। सा स्थितिर द्विविधम, स्थिति के दो भेद तो मुख्य है, जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति। जघन्याय उत्कृष्ट आयु ऐसा होता है ना। तो सबसे पहले तो यासाम कर्म प्रकृति नाम उत्कृष्ट स्थिति समाना तन निर्देशार्थम उच्यते। अब जिन कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति एक समान है उनको एक साथ मिला करके एक ही सूत्र में बता देते हैं। आदितस्तिसृणामंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थिति। आदितस्तिसृणाम, आदि की जो तीन प्रकृतियां हैं, कौन सी तीन है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, ये तीन प्रकृतियां आदि की उनकी, और अंतरायस्य च और अंतराय कर्म की। तो देखो आठ कर्मों में से चार कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति वो एक सूत्र में बता दी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्य परास्थिति, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है इन चारों की। 30 कोड़ा कोड़ी सागर यानी 3 बार 24 तीर्थंकर हो जाए, इतनी लंबी स्थिति है। असाता वेदनी की, अंतराय आदि की, सब ज्ञानावरण दर्शनावरण की। सप्ततिर मोहनीयस्य, और 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति मिथ्यात्व की है। अगर किसी ने तीव्र मिथ्यात्व का बंध बांध लिया, उत्कृष्ट स्थिति बंध, तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के उसका अंतिम परमाणु खिरेगा। 7000 वर्ष से उसका उदय चालू हो जाएगा और लास्ट उसका जो परमाणु होगा वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब 7 बार 24 तीर्थंकर हो जाएंगे। 7 24ियां गुजर जाएंगी तब तक एक अकेला मिथ्यात्व का बंध, एक बार में जो बांधा है वो तब तक चलेगा। कितना खतरनाक। विंशतिर नाम गोत्रयोः, और नाम गोत्र की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, नाम कर्म की और गोत्र कर्म की। पर ये सारी स्थितियां जो है मिथ्या दृष्टि जीव को, जो सैनी पंचेंद्री और पर्याप्तक है उसी को बंधेगी, क्योंकि इतनी उत्कृष्ट स्थिति और बाकी बिना कषाय के नहीं बन सकते ना, तो उतनी कषाय यही कर सकता कोई सैनी पंचेंद्री पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव होगा वही कर सकता। आयु कर्म की कितनी स्थिति रहेगी उत्कृष्ट, क्योंकि 7 कर्म की तो बता दी आपने, 4 की पहले बताई, उसके बाद मिथ्यात्व की दूसरे में बताई और ये बाकी बता दी नाम और गोत्र की। अब इसमें कषाय की अलग से स्थिति नहीं बताई, वो 70 कोड़ा कोड़ी सबसे अधिक स्थिति जो है मिथ्यात्व की है, 40 कोड़ा कोड़ी अनंतानुबंधी की है और बाकी सब की अपने अपने हिसाब से है। त्रयस्त्रिंशत् सागर उपवाण्यायुषः, 33 सागर की आयु आयु की सबसे ज्यादा होती है, उतनी स्थिति आयु की सबसे सर्वाधिक स्थिति इतनी होती है। आयुष 33 सागरूपमाणी, 33 सागरूपम आयु की उत्कृष्ट स्थिति होती है। कहाँ होती है? ऊपर अनुत्तर विमानों में होती है और नीचे सप्तम पृथ्वी में होती है। अब जघन्य स्थिति बतलाते हैं। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीय, 7 वेदनीय की जघन्य स्थिति कितनी है? तो बोले 12 मुहूर्त, दशम गुण स्थान में बनती है। नहीं तो कोई सोचे कि आज मैं 7 का बंद कर लूं अच्छा और 12 मुहूर्त में उसका उदय आ जाए, अच्छे ठाट से रहूं, ये बहुत ही दुर्लभ है। दशम गुण स्थान एक जीव अधिकतम 5 बार प्राप्त कर सकता है, 10वां गुण स्थान मोक्ष जाने तक, तो वहां 12 मुहूर्त की स्थिति होती है। नाम गोत्र और अष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। शेषाणाम अंतर मुहूर्त, बाकी सब कर्मों की एक सिरे से सारे बचे हुए जितने कर्म हैं उनकी जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। अब अनुभाग बंध की बारी आती है कि कर्मों की जो शक्तियां होती है वो बतलाते हैं। विपाक अनुभव, विपाक जो उसका पाक होता है उसको अनुभाग बंध कहते हैं, मतलब कितना कड़वा है कितना मीठा है, वो जो स्वाद आता है ना कर्म के उदय का, उसका नाम अनुभाग बंध है। वो जितने कषाय के साथ होगा उतना तेज होगा वो। स यथा नाम, वो जैसा उसका नाम है परम प्रकृति का वैसा ही रहेगा वो। ज्ञानावरण का, ज्ञान को आवरण डालने वाला वाली शक्ति रहेगी उसमें। दर्शनावरण में दर्शन पर आवरण डालने वाली शक्ति रहेगी। तो वो जो शक्ति होती है इंटेंसिटी, वो अनुभाग बंध है। सभी कर्मों के साथ ऐसे ही है। फिर आचार्य कहते हैं कि अनुभाग बंध तो जब कर्म उदय में आता है तभी अनुभव में आ सकता है, उसके आगे पीछे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, उसके आगे पीछे नहीं पता चलेगा, पीछे तो याद रह सकती है, तो आगे तो क्या है कि पूर्व में अगर देखें तो बंधा हुआ है कर्म। इतना है कि बस तीन आयु का बंध होने पर जीव संयम को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना भर आता है शास्त्रों में कि अगर किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंध बांध लिया, तिरेंच आयु का बंध बांध लिया या नरक आयु का बंध बांध लिया, तो फिर वो अणुव्रत या महाव्रत नहीं धारण कर सकता। ये नियम है। भाव से है ना, द्रव्य से कोई, इन तीन गतियों का पात्र जीव भी नाटक पर वैसा कोई पात्र बनकर के आ सकता है या अपने जीवन में भी वैसा कुछ कर सकता है बाह्य से, लेकिन अंतरंग में जो परिणाम होते हैं वो नहीं बन सकते। ततश्च निर्जरा, उसके बाद क्या होता है, वो कर्म का फल दे दिया कर्म ने, उसके बाद कहाँ जाता है वो कर्म, उसके बाद निर्जरा वो जड़ जाता है। अब वो निर्जरा दो प्रकार की होती है, विपाकजा इतरावा अविपाकी, विपाक सविपाकी और अविपाकी, सविपाक और अविपाकी दो प्रकार की निर्जरा होती है। जो चारों गतियों के जीव कर्म के उदय को भोग करके झड़ा देते हैं वो सविपाक है, और जो अविपाक यानी अभी उसका पकने का समय नहीं आया, जैसे आम के पकने का समय नहीं आया लेकिन आपने तोड़कर उसको रख लिया किसी स्थान पर और वो पक गया जल्दी जल्दी, कहीं ऐसे स्थान पर रख लेते हैं ना फलों को तो पक जाते हैं, तो वैसे ही जो तपस्या आदि कर करके इन कर्मों को झड़ा देते हैं वो अविपाकी निर्जरा। पहली सबके होए नहीं कछुक सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फिर। तपस्या करके अगर उद्यम करके दूसरी निर्जरा कर लोगे तो संसार का भ्रमण मिट जाएगा। आह अभिहितो नुभाव अनुभव बंध, ठीक है, अनुभाग बंध भी समझ में आ गया, तीन सूत्रों में बता दिया आपने, विपाको अनुभव स यथा नाम ततश्च निर्जरा। इदानीम प्रदेश बंधो वक्तव्य, अब ये बताओ कि प्रदेश बंध क्या वस्तु है। तो तस्मिंच वक्तव्य सति इमे निर्देशव्या, तो प्रदेश बंध का कथन करने में ये सारी बातें जान बताने योग्य होती है। किंग हेतव, प्रदेश बंध का कारण क्या होता है, फिर कदा कब होता है, कुतः कहाँ से होता है, किन स्वभाव, स्वभाव क्या होता है, कस्मिन कहाँ पर होता है, कहाँ से होता है और कहाँ पर होता है, कब होता है, किम परिमाणश्चेति और कितनी मात्रा में होता है, ये सब बता देते हैं एक सूत्र में। तदर्थम इदम क्रमेण परिगृहित प्रश्नापेक्ष भेदम सूत्रम प्रणीयते, अब ये सूत्र का प्रणयन करते हैं। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। ये महत्व का सूत्र है। नामनः प्रत्यया नाम प्रत्ययः, नाम इति सर्वाः कर्म प्रकृतयो विधीयते, सब कर्म प्रकृतियों को ले लेना इसमें। स यथा नाम में सब कर्म के नाम आ गए थे, तो नाम प्रत्यय नाम के कारणवश अनेन हेतु भाव उक्त। इससे क्या हुआ कि प्रदेश बंध किस कारण होता है, तो उसका हेतु बता दिया। नाम प्रत्यय सर्वेषु भवेषु सर्वतः दृश्यन्ते अन्यतोपि इति तस्य कृते सर्वतः। फिर सर्वतः शब्द आया, तो सब भवों में सब ओर से ये कर्म आते हैं, इसलिए सर्वतः लिखा। अनेन कालोपादनम इति कृतम, इससे समय का निर्णय हो गया कि कब आते हैं वो कर्म, तो सभी भवों में आते हैं। फिर एकैकस्य हि जीवस्य अतिक्रांता अनंता भवः, एक एक जीव ने अनंत भव बिता दिए हैं। आगामिना असंख्य असंख्य अनंतानंता वा, आगामी भव संख्यात हो सकते हैं, असंख्यात हो सकते हैं, अनंतानंत भी हो सकते हैं। भवंती इति योग विशेषात, अब योग विशेष से निमित्तात कर्म भावेन पुद्गला आदियंते, योग के कारण ये पुद्गल जो है कर्मण वर्गणा के, वो कर्म रूप से स्वीकार किए जाते हैं आत्मा में, इसलिए योग विशेषात लिखा। इति निमित्त विशेष निर्देश कृतो भवति, इससे प्रदेश बंध का निमित्त विशेष क्या है, तो योग ये हो गया। सूक्ष्म आदि ग्रहणम, सूक्ष्म आदि जो ग्रहण किया है, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगा, उसमें कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल स्वभावानुवर्तनार्थम, कर्म के रूप में ग्रहण करने योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म पुद्गल होते हैं, वो सामान्य पुद्गल नहीं होते, सूक्ष्म पुद्गल होते हैं। ग्रहण योग्या पुद्गला सूक्ष्मा न स्थूला इति, ग्रहण के योग्य जो पुद्गल होते हैं कर्म के रूप में, वो सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं हो सकते। फिर आत्मा किस जगह बंद होता है, आत्मा में, ज्ञानावरण का यहां दिमाग में बंद होता है, और कषायों का यहां दिल में बंद होता है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि एक क्षेत्रावगाह वचनम क्षेत्रांतर निवृत्त्यर्थम, पूरे आत्म क्षेत्र में सभी कर्मों का बंद होता है, कहीं ऐसे अलग अलग हिस्सों में नहीं होता। स्थिता इति वचनम क्रियांतर निवृत्त्यर्थम, वो स्थित हो जाते हैं, चलते फिरते नहीं है वो कर्म, वहीं सर्वात्म प्रदेशेषु सब आत्मा के प्रदेशों में होते हैं। इति वचनम आधार निर्देशार्थम, वो आधार का निर्देश करने के लिए, मतलब कहाँ कहाँ बंद होते हैं, तो सभी जगह होते हैं। नैक प्रदेशादिशु कर्म प्रदेशा वर्तन्ते, सिर्फ आत्मा के एकाध प्रदेशों में कर्म नहीं रहते, सब जगह रहते हैं। क्वतरि कहाँ कहाँ, तो बोले ऊर्ध्व अधस्तिर्यक्च सर्वेषु आत्म प्रदेश, ऊपर नीचे तिरछे सब जगह आत्म प्रदेशों में व्याप्य स्थित, व्याप्त होकर के वो स्थित हो जाते हैं कर्म परमाणु। अनंतानंत प्रदेश वचनम, अनंतानंत प्रदेश जो आया था उससे क्या लेना, परिमाण अंतर व्यपोहार्थम, बोले कि संख्यात और असंख्यात में आप मत भटक जाना, हर समय अनंतानंत पुद्गल के परमाणु ही कर्म रूप परिणत होते हैं, संख्यात या असंख्यात परमाणु नहीं, अनंतानंत परमाणु हमेशा कर्म बंध को प्राप्त होते हैं। ते खलु पुद्गल स्कंदा अभव्यानंत गुणा, कितने होते हैं अनंत, तो बोले अभव्यों से अनंत गुणित, और सिद्धा अनंत भाग प्रमित प्रदेशा, और सिद्धों के अनंत भाग रहते हैं वो कर्म परमाणु। घनांगुलस्य असंख्येय भाग क्षेत्रावगाहिन एक द्वि त्रि चतु संख्येयासंख्येय समय स्थितिका पंच वर्ण पंच रस द्विगंध चतुस्पर्श स्वभावः। घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र की अवगाहना वाले एक दो तीन चार संख्यात और असंख्यात समय की स्थिति वाले, तथा पांच वर्ण पांच रस दो गंध और चार स्पर्श वाले वे कर्म स्कंद योग वशात आत्मना आत्मसात क्रियते, योग के प्रभाव से आठों प्रकार के कर्म आत्मा द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं। इति प्रदेश बंध समास तो वेदितव्य, इस तरह प्रदेश बंध का संक्षिप्त वर्णन पूर्ण होता है, इसको जान लेना। अब अंत में आह बंद पदार्थानंतरम पुण्य पापोपसंख्यानम चोदितम। बंद के बाद में आपको पुण्य और पाप भी बताना पड़ेगा। अभी तो आपने केवल बंद बताया, आश्रव बता दिया, अब पुण्य और पाप बता दीजिए। तद बंधेन्तर्भूतम इति प्रत्याख्यातम। वो बंध में आ जाते हैं पुण्य और पाप, इसलिए यहां अलग से ना करके उसको छोड़ दिया। तत्त्रेदं वक्तव्यं कोत्र पुण्यबंध। तो यहां कम से कम ये तो बता दो कि पुण्यबंध कौन से हैं और पापबंध कौन सा है। तो फिर उसके लिए दो सूत्र कहते हैं आचार्य उमा स्वामी। तत्र पुण्य प्रकृति परिगणनार्थम इदम आरभ्यते। पुण्य प्रकृतियों की गिनती करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। इतने पुण्य हैं, सातावेदनीय, शुभ आयु, तीन शुभ आयु होती है, तिर्यंच आयु, मनुष्यायु, देवायु। तिर्यंच गति अशुभ है, तिर्यंच आयु शुभ है, क्योंकि जिस आयु को प्राप्त होकर के जीव मरना ना चाहे, ऐसा एक विचार एक चिंतन सुनने में आता है, उसको शुभ मान लेते हैं। शुभ नाम सप्तत्रिंशत् विकल्पम। शुभ नाम कर्म के 37 भेद कौन से? मनुष्य गतिर, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, पंच शरीर, त्रीण्यंगोपांगानी, समचतुरस्र संस्थानम, वज्र वृषभ नाराज संगननम, प्रशस्त वर्ण रस गंध स्पर्शा, मनुष्य देव गत्यानुपूर्व्य द्वयम्, अगुरु लघु, परघात उच्छ्वासातपोद्योत, प्रशस्त विहायोगतेस, त्रस बादर पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर स्थिर, शुभ सुभग, सुस्वरादेय यश कीर्तयो निर्माण तीर्थकर नाम चीति। शुभम एकम उच्चैर गोत्रम सद्वेद्यमिति। एता द्वा चत्वारिंशत् प्रकृतयः पुण्य संज्ञाः। सातावेदनीय और 37 प्रकार के शुभ नाम कर्म, फिर 3 आयु और 1 गोत्र, ऐसी 42 पुण्य प्रकृतियां होती है। कुल मिलाकर के पुण्य की संख्या 42 होती है, 42। अतः उन्नत पापम, इससे अन्य जो है वो पाप है। यानी पुण्य से जो दूसरी प्रकृति है उसका नाम पाप है। कितने हैं वो? द्व्यशीति विधम, 82 है। ज्ञानावरण की प्रकृति 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 26, अंतराय की 5, नरक गति, तिर्यंच गति, 4 जातियां, 5 संस्थान, 5 संगनन, अप्रशस्त वर्ण रस गंध स्पर्श, नरक गति, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात। अच्छा, उपघात वहां पर भी था पुण्य में भी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भूल से छप गया हो? उपघात था क्या? परघात उच्छ्वासातपोद्योत प्रशस्त विहायोगते, नहीं नहीं ठीक है, नहीं था, उपघात इधर ही है, परघात उधर था। अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर सूक्ष्म पर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय अयश कीर्ति, इस तरह नाम प्रकर्मों की 34 प्रकृतियां हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाम कर्मों में 37 पुण्य है और 34 पाप है, तो बहुमत पुण्य का है नाम कर्म में। असद्वेद्यम नरकायुर नीचैर गोत्रमिति। फिर असाता वेदनी, नरकायु और नीच गोत्र, ये भी पाप प्रकृति है। एवं व्याख्या तो सब प्रपंच बंद पदार्थ। इस प्रकार विस्तार सहित बंद पदार्थ का व्याख्यान पूर्ण हुआ। अवधि मन परे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य, ये जो व्याख्यान है वो अवधि मन परे और केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है। तदुपदिष्ट आगमानुमेय, और उनके द्वारा उपदिष्ट जो आगम है उससे अपने लिए अनुमान के योग्य है। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिकायां अष्टमोध्याय समाप्त। इस तरह सर्वार्थ सिद्धि का आठवां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जैनम जय दुशासनम।